पेज 26, लेसन नंबर 5, भारत के ऊंचे ऊंचे पहाड़। भारत के उत्तर में आकाश छूती और बर्फ से ढकी हिमालय पर्वत माला है। इसकी तीन कड़ियां है जो माला की तरह एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये हैं मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। हिमालय पर्वत माला के अलावा राजस्थान में अरावली पर्वत माला है। दिल्ली के आसपास इसी के हिस्से आपको दिखाई देते हैं। एक जमाने में ये काफी ऊंचे पहाड़ हुआ करते थे। धीरे धीरे घिस कर आज ये पहाड़ी की शक्ल में नजर आने लगे हैं। चिंकू आज बहुत खुश है। उसकी दादी आज उत्तरांचल से घूम कर लौटी थी। घर में घुसने की देर थी कि चिंकू ने हल्ला मचा दिया। मेरे लिए क्या लाई दीदी, बताओ बताओ ना, ये क्या लाई हो? पेज 27, मम्मी ने कहा, अरे चिंकू, दीदी को नहा धोकर थोड़ा आराम तो कर लेने दो, फिर अपनी चीजें भी ले लेना और उसकी कहानियां भी सुन लेना। चिंकू की दीदी आयशा अपने दफ्तर के लोगों के साथ उत्तरांचल गई थी। वे लोग खेती के तरीकों पर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। वे जानना चाहते थे उत्तरांचल के गांव में लोग पहाड़ों पर कैसे खेती करते हैं। दीदी जितनी देर आराम करती रहीं, चिंकू उतावला होकर उनके बगल में ही लेटा रहा। दीदी के जागते ही वह उनसे पूछना चाहता था कि उन्होंने क्या देखा, क्या खाया, क्या किया। आयशा दीदी सोकर उठी तो घर के बाकी लोग भी उन्हें घेर कर बैठ गए। दीदी ने बताना शुरू किया, दिल्ली से जब हम ऋषिकेश पहुंचे तो रेलवे स्टेशन से ही हमें आगे जाने के लिए बस मिल गई थी। पेज 28, ऋषिकेश में अच्छी खासी गर्मी थी, पर ज्यों ज्यों बस ने पहाड़ों पर ऊपर चढ़ना शुरू किया, ठंड महसूस होने लगी और फिर ठंड बढ़ती ही गई। हमने बस में ही स्वेटर, टोपा, मोजा पहन लिया था, पर फिर भी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। चिंकू ने अचानक पूछा, बस में स्वेटर कहाँ से आए? आयशा दीदी ने कहा, अरे सभी को पता है कि उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों में बहुत ठंड होती है, इसलिए हम सब ऊनी कपड़े लेकर गए थे, बैग में ऊपर ही रखे थे, ठंड लगनी शुरू हुई तो निकाल कर पहन लिए। दीदी ने फिर से बताना शुरू किया, हमारी बस घुमावदार रास्तों पर चल रही थी। क्या रास्ता था, सड़क दूर से एक बड़े सांप की तरह दिखाई दे रही थी। बीच बीच में इतने तीखे मोड़ थे कि बस के वहां मोड़ने पर डर लगता था कहीं बस पलट न जाए। इन मोड़ों के पास सड़क के किनारे बोर्ड पर लिखा था, सावधान, आगे खतरनाक मोड़ है। सड़क की एक तरफ पहाड़ और दूसरी तरफ इतनी गहरी खाई कि देखते ही सर चकरा जाता था। अब बर्फ की नदी से निकली गंगा। आयशा दीदी ने आगे बताया, हम उस जगह गए थे जहां से गंगा नदी शुरू होती है, गंगोत्री। गंगोत्री से थोड़ा ऊपर गोमुख नामक जगह से गंगा एक बर्फ की नदी से निकलती है। हिमालय के ऊपरी भाग में बारिश तो नहीं होती है, मगर बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है। पहाड़ पर नजर घुमाओ तो चारों तरफ सफेद सफेद बर्फ ही दिखाई देती है। चिंकू ने तपाक से कहा, अरे वहां के लोगों को फ्रिज की तो जरूरत ही नहीं, शरबत में डालने के लिए बर्फ तो पहाड़ से ही मिल जाती होगी। सब हंसने लगे। आयशा दीदी ने बताया कि अलग तरह की बर्फ है, उसे हिम कहते हैं, और वैसे भी इतनी ठंड में लोग शरबत नहीं चाय पीते हैं। खैर, वे आगे बोली, यह बर्फ इकट्ठी होकर धीरे धीरे खिसकते हुए नदी का रूप ले लेती है। जब यह बर्फ की नदी कुछ नीचे आती है, वहां ठंड थोड़ी कम होने से यह बर्फ पिघलने लगती है। हमने गोमुख में इस तरह पानी को टपकते देखा, इसके बाद यही पानी नदी के रूप में बहने लगता है। इसमें जगह जगह छोटे बड़े नदी नाले झरने मिलते हैं और यह नदी बड़ी होकर विशाल गंगा नदी बन जाती है। पेज 30। बर्फीली चोटियां व फूलों की घाटियां। अब चिंकू ने पूछा, दीदी जब वहां इतनी ठंड और बर्फ होती है तो वहां लोग रहते कैसे होंगे? दीदी ने जवाब दिया, इतनी ऊंचाई पर लोग नहीं रहते, बस गर्मियों में बकरवाल यहाँ भेड़ बकरियों को घास चराने ले जाते हैं। जब गर्मियों में बर्फ पिघलने लगती है केवल तभी लोग यहाँ किस तरह आ पाते हैं। इतनी ऊंचाई पर पेड़ पौधे तो क्या घास भी नहीं होती है, बस चारों तरफ सफेद बर्फीले पहाड़ और बर्फ की हिमानी नदियां दिखाई पड़ती हैं। हाँ, यहाँ से थोड़ा नीचे आने पर कई जगह हरी भरी और बहुत ही सुंदर फूलों से भरी घाटियां दिखाई देती हैं। इन्हें यहाँ बुग्याल कहते हैं, लेकिन ये भी जाड़े के मौसम में बर्फ से ढके होते हैं। गर्मियों में जब पहाड़ों के निचले हिस्से की बर्फ पिघल जाती है तो यहाँ मुलायम घास और छोटे छोटे पौधे उग आते हैं। गर्मियों में ही यहाँ नीचे के पहाड़ी गांवों से लोग अपने जानवर भेड़ बकरी गाय आदि चराने आते हैं। इन बुग्यालों में सागौन जैसे बड़े पेड़ नहीं होते हैं, इससे कम ऊंचाई पर वहां चीड़ देवदार और बांज आदि के पेड़ मिलना शुरू होते हैं। गर्मी हो या सर्दी, इनमें हरियाली बनी रहती है। माँ ने पूछा, आयशा इतनी सारी बातें तुम्हें किसने बताई? दीदी बोली, दरअसल हमने ऋषिकेश से ही एक गाइड साथ में ले लिया था और वहां लोगों से भी बातचीत की थी, उन्हीं से हमें पहाड़ के गांव के बारे में भी पता चला। अब पहाड़ के गांव। हमने आते आते रास्ते में बहुत से गांव देखे और एक गांव में तो हमें 2 दिन रुकना भी पड़ा। पहाड़ी गांव बहुत छोटे होते हैं, एक गांव में 30-40 से ज्यादा घर नहीं होते। घर पत्थर और लकड़ी के बने होते हैं, ज्यादातर ये पहाड़ी ढलानों पर बसे होते हैं। इन ढलानों पर भी लोग खेती करते हैं। पहाड़ की ढलानों पर पत्थर और मिट्टी की दीवारें बनाकर मिट्टी को बहने से रोका जाता है। इसे छोटे छोटे समतल खेत तैयार हो जाते हैं। लोग बता रहे थे कि वैसे खेत बनाने में बहुत मेहनत लगती है, मगर ये खेत बहुत छोटे होते हैं और इनकी उपज से लोगों को साल भर खाने लायक अनाज नहीं मिल पाता। अपने गुजारे के लिए यहाँ के लोग खेती के अलावा और भी कई छोटे मोटे काम करते हैं, जैसे भेड़ बकरी या गाय पालना। यहाँ के लोग विशेषकर महिलाएं बहुत मेहनती होती हैं। चूल्हा जलाने के लिए दूर दूर जंगलों से लकड़ी इकट्ठा करके लाना, नीचे गहरी घाटियों में उतरकर नदी से पानी भरकर लाना, जानवरों के चारे के लिए खतरनाक ढलानों पर घास काटना और पहाड़ों में खेत संभालना बहुत ही मेहनत के काम है। पेज 32। पहाड़ों का टूटना। दीदी ने आगे बताया, पता है हमें एक गांव में 2 दिन क्यों रुकना पड़ा? दरअसल जब हम लौट रहे थे तो एक जगह पर पता चला कि आगे पहाड़ खिसक जाने से ढेर सारे पत्थर और मिट्टी सड़क पर आ गिरी थी और सड़क बंद हो गई थी। जब तक उन पत्थरों और मिट्टी को साफ नहीं किया जाता, हम आगे कैसे बढ़ते? अब चिंकू पूछ बैठा, मगर ये पहाड़ टूटते कैसे हैं? दीदी ने समझाया, पहले इन पहाड़ों पर घने जंगल हुआ करते थे। इससे यह होता था कि पेड़ों की जड़ें पहाड़ की मिट्टी को जकड़े रहती थी और उन्हें खिसकने नहीं देती थी। मगर पिछले 100 सालों में व्यापारियों ने इन पेड़ों को काटकर बेच दिया और पहाड़ नंगे हो गए। अब मिट्टी को खिसकने से रोकने का कोई साधन नहीं रहा, इसलिए बरसात शुरू होते ही यह मिट्टी जगह जगह से खिसकने लगती है। इससे बड़ा नुकसान होता है। कई बार तो गांव के गांव दब जाते हैं और सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। पिताजी ने पूछा कि तुम लोग इतने दिनों तक अपना काम ही करते रहे या कुछ घूमे फिरे भी? Page 33। दीदी ने बताया कि उत्तरांचल में घूमने की कई जगह हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एवं केदारनाथ। यहाँ काफी मंदिर भी हैं, हजारों लोग वहां हर साल आते हैं। हमने भी कुछ मंदिर देखे, पर पहाड़ के गांव और उनकी खेती के बारे में जानने को इतना कुछ था कि खेतों में ही घूमना फिरना हो जाता था। अब अरुणाचल प्रदेश। दीदी चिंकू के लिए जो सुंदर सा टोपा लाई थी वह निकाल कर दे दिया। अब यात्रा वर्णन सुनाने के बाद थोड़ा सुस्ताना चाहती थी, तभी फोन की घंटी घनघना उठी। चिंकू ने उठाया। आयशा दीदी की सहेली ज्योतिष्ना दीदी का फोन था। वे भी सुबह ही अरुणाचल प्रदेश से लौटी थी। अरुणाचल भी एक पहाड़ी प्रदेश है, पर उत्तरांचल से बहुत दूर पूर्व दिशा में है। यह जानकर कि आयशा दीदी घर पर ही है, वे फौरन घर आ गईं। चिंकू उनके भी पीछे लग गया। वे चिंकू के लिए हाथ से बुनी बहुत रंग बिरंगी जैकेट लाई थी। जैकेट लेते ही चिंकू चला गया और दोनों सहेलियां बातें करने लगी। हाल चाल पूछकर ज्योतिष्ना ने बताना शुरू किया कि वह कैसे अरुणाचल प्रदेश गई। मेरी दोस्त चोन चोन अरुणाचल प्रदेश की है, उसकी बहन की शादी थी। शादी में चोन चोन ने मुझे भी बुला लिया। उसका कहना था कि शादी देख लो, हमारे लोगों से मिल लो, हमारे राज्य की सैर भी कर लो। Page 34। पहले तो मुझे डर लगा, अरुणाचल प्रदेश अपनी दिल्ली से कितनी दूर है। ट्रेन से जाओ तो भी 2-3 दिन लग जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे राज्य पार करने होते हैं। ऊपर से चोन चोन का गांव ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी से भी 20 किलोमीटर दूर है। वहां ट्रेन तो जाती नहीं है, बस भी नहीं जा पाती, पैदल का रास्ता है। लेकिन मुझे नई जगह देखने की उत्सुकता भी थी, ऐसा मौका फिर मिले या ना मिले। मैंने अरुणाचल जाने का निश्चय किया। इससे पहले कि मैं शादी की बातें बताऊं, मैं तुम्हें अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ बता दूं जो मैंने किताबों को पढ़कर जाना था। अरुणाचल प्रदेश अपने देश के पूर्वी छोर पर है। हिमालय पर्वत के बीच में यह राज्य बसा हुआ है। इन पहाड़ों के ऊपरी हिस्सों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। निचले हिस्सों में घने वन हैं। इन पहाड़ों के बीच कई छोटे बड़े नदी नाले तेजी से बहते हैं। कुछ नदियों की चौड़ी घाटियां हैं जहां समतल जमीन है। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि अरुणाचल में गर्मी का मौसम ही नहीं होता। यहाँ 2 ही मौसम होते हैं, ठंड और बारिश का। वहां नवंबर से फरवरी तक कड़ाके की ठंड पड़ती है और मार्च से ही पानी बरसने लग जाता है। बारिश बढ़ती जाती है और जून से सितंबर तक घनघोर मूसलाधार वर्षा होती है। अक्टूबर के अंत तक बारिश थमती है, मगर अब ठंड शुरू हो जाती है। जब इतनी बारिश होती है तो जंगल घने होते हैं, होंगे ही। इनमें कई तरह के पेड़ हैं। ऊंचे स्थानों पर चीड़ के पेड़ होते हैं। वहां जंगलों में खासकर बांस और बेंत बहुत अधिक होते हैं। अरुणाचल में जंगलों में शेर, सुअर, हिरन, हाथी आदि तो मिलते ही हैं, लेकिन यहाँ दो ऐसे जानवर भी मिलते हैं जो हमारे आसपास नहीं होते हैं। ये हैं याक और मिथुन। पेज 35। याक मोटे भैंसे जैसा दिखता है, पर इसका शरीर पूरी तरह बालों से ढंका होता है। यह केवल हिमालय व तिब्बत जैसे ऊंचे ठंडे इलाकों में होता है। इसे सवारी और सामान ढोने के काम के लिए पाला जाता है। मिथुन अरुणाचल के लोगों का मुख्य पालतू जानवर है। इसे मांस के लिए पाला जाता है। जिसके पास अधिक मिथुन है उसे धनवान माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में कई आदिवासी कबीले रहते हैं, अपातानी आदि, वांचू, मोनप्पा आदि। ये लोग अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इनकी भाषा, धर्म, रीति रिवाज आदि भी अलग अलग हैं। पेज 36। चोन चोन का गांव पहाड़ की घाटी में है। रास्ते में मुझे एक नदी दिखी। पता चला कि नदी के उस पार चोन चोन का गांव है। अब नदी कैसे पार करूं? मुझे रास्ता दिखाने के लिए चोन चोन का भाई साथ था। उसने मुझे कुछ दूरी पर बना एक पुल दिखाया। यह पुल पत्थर, सीमेंट या लकड़ी का नहीं बना था, ना ही जमीन पर टिका था। यह पूरी तरह बेंत और बांस से बना था और नदी के दोनों किनारों पर दो मजबूत पेड़ों से लटक रहा था। ऐसा लग रहा था कि यह खूब लंबा झूला है और जो चलने पर लचक रहा था। इस पर चलने में मुझे डर लगा और थोड़ा मजा भी आया। किसी तरह धीरे धीरे चलकर मैं पुल पार कर गई। गांव में मुझे चोन चोन और उसकी सहेलियां मिली। उनके साथ मैं चोन चोन के घर गई। वह जिस कबीले की है उसका नाम आदि है। उसका घर हमारे घरों से अलग था। बांस के खंभों पर कुछ ऊंचाई पर एक बांस का चबूतरा बनाया गया था। यही घर का फर्श था। बांस के खंभों पर घर टिका था। ऊपर एक लंबा कमरा था। इसकी दीवारें भी बांस की ही बनी थी। छत डलवान थी और घास फूस की बनी थी। अरुणाचल में ज्यादातर घर इसी तरह बनते हैं। चूंकि यहाँ बहुत अधिक बारिश होती है, इसलिए जमीन में सीलन बनी रहती है। इस नमी के कारण तरह तरह के कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, चूहे और जोंक आ जाते हैं। इन सबसे बचने के लिए अरुणाचल के लोग खंभों पर घर बनाते हैं। बांस के खंभों पर बांस के घर। घर के अंदर जाने पर बांस की और भी चीजें दिखती है। टोकरी, कड़छी से लेकर पानी भरने और खाना पकाने तक के बर्तन बांस से बने थे। पेज 37। अभ्यास। फर्स्ट क्वेश्चन। अपने प्रदेश में जब तेज गर्मी पड़ती है तब अरुणाचल में मौसम कैसा होता है? 2। इनमें से कौन सा जानवर अरुणाचल में नहीं मिलेगा? क याक, ख शेर, ग ऊंट, घ सुअर। 3। अरुणाचल के लोग पहाड़ों पर सामान ले जाने के लिए किस जानवर का उपयोग करते हैं? 4। इनमें से किन चीजों का उपयोग अरुणाचल के पुलों में किया जाता है? क सीमेंट, ख ईंट, ग बांस, घ बेंत। अब आगे। कुछ देर तक हम गांव में घूमते रहे, फिर हम खाना खाने बैठे। लकड़ी और बांस के बर्तनों में तरह तरह के पकवान रखे थे। 8-10 तरह के मांस, तरह तरह की सब्जियां और साग, बांस के कोम्पल, चावल, मक्का। साथ में कई तरह के फल भी थे। अनानास, आलू बुखारा, सेब और बहुत से फल जिन्हें मैंने पहले नहीं देखा था। मैंने देखा उनके भोजन में दूध, दही या मक्खन नहीं है। चोन चोन ने बताया कि वे दूध का उपयोग ही नहीं करते हैं। हाँ, आजकल कुछ लोग चाय पीने लगे हैं। खाने के बाद चोन चोन की माँ ने कहा, तुम लोग खेत में से कुछ सब्जी ले आना, शादी में जरूरत पड़ेगी। खेत काफी दूर घने जंगल के बीच था। चोन चोन ने बताया कि वे लोग हर 2-3 साल में जंगल में नई जगह खेती करते हैं। Page 38, गांव के सब लोग मिलकर जंगल साफ करते हैं। लकड़ी, पत्ते आदि सूख जाने पर उन्हें जला देते हैं, फिर उस राख पर बीज बोते हैं। वे अपने खेतों पर हल नहीं चलाते। नई बात यह है कि वे कई तरह के बीज एक ही खेत में एक साथ बोते हैं, चावल, मक्का, भिंडी, टमाटर आदि। जब वे पक जाते हैं तब उन्हें अलग अलग काट लेते हैं। एक ही जगह 2-3 साल खेती करने के बाद वे जंगल के किसी दूसरे भाग को साफ करके खेत तैयार करते हैं। पुरानी जमीन पर अब फिर से जंगल उगने लगेगा। इस तरह की खेती को झूम खेती कहते हैं। सब्जी तोड़ते तोड़ते मैंने चोन चोन से पूछा, क्या अरुणाचल में सभी लोग झूम खेती करते हैं? उसने कहा, हाँ, अपातानी लोगों को छोड़कर सभी झूम खेती ही करते हैं। अपातानी लोग समतल नदी घाटी पर रहते हैं। पहाड़ों से आने वाले झरनों के पानी का इस्तेमाल करके वे धान की खेती और मछली पालन करते हैं। वहाँ एक ही खेत में साल दर साल खेती होती है। बातें करते करते हम घर लौटने लगे। तब तक अंधेरा हो गया था। जैसे ही हम गांव के पास आए तो हमें बल्ब की रोशनी दिखने लगी। चोन चोन ने बताया, पहले हम लालटेन की रोशनी से काम चलाते थे। पिछले कुछ सालों से हमारे गांव में बिजली बनने लगी है। वह देखो बिजली घर, वहां बिजली बनती है। उस पहाड़ के ऊपर से झरने का पानी पाइपों से तेजी से बहकर आता है और बिजली घर की मशीन उससे चलती है। इसी से हमारे गांव के उपयोग के लिए बिजली बन जाती है। इसकी देख रेख मेरे बड़े भैया खुद करते हैं। Page 39, मैं सोचने लगी, ऐसे बिजली घर हर इलाके में बन जाएं तो कितना अच्छा रहेगा। अगले दिन लड़के वाले जुलूस में आए, साथ में कई मिथुन, सुअर, चावल आदि भी लाए। शादी की रस्म पूरी हुई और चोन चोन की बहन उनके साथ चली गई। शाम को लड़की वालों को लड़के वालों के घर भोजन के लिए बुलाया गया। सबने खूब खाया। फिर सबको घर ले जाने के लिए मांस आदि मिला। सब खुशी खुशी घर लौटे। अब अभ्यास। Question 1, मानचित्र में पहचानो कि हिमालय कहां से कहां तक है। 2, पहाड़ पर बनी सड़क घुमावदार क्यों है। 3, गंगा नदी में पानी कहां से आता है। 4, पहाड़ पर बसे गांव के लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता है। Page 40, Question 5, दिल्ली से अरुणाचल प्रदेश जाने के लिए कौन कौन से राज्य पार करने पड़ते हैं। 6, झूम खेती की तस्वीर देखकर व बनाकर इसके बारे में लिखो। 7, अरुणाचल प्रदेश के घर कैसे होते हैं। 8, अरुणाचल प्रदेश में उगने वाले फलों की तस्वीर बनाकर चार्ट पर चिपकाओ। 9, हिमालय से निकलने वाली नदियों के नाम लिखो, वे हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। 10, इन शहरों को चुनकर हमारे बाहरी राष्ट्र के वर्णन के साथ मिलान करो, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम। क, यह राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ख, यह राज्य चाय के बागान व रेशम के लिए प्रसिद्ध है। ग, सूर्य इस राष्ट्र में सबसे पहले निकलता नजर आता है। घ, इस राज्य को मेघों का घर कहा जाता है। न, यहाँ खासी व गारो जनजातियां रहती है। 11, बर्फ हिमालय से पिघलकर बड़े बड़े टुकड़ों में नीचे खिसकती है, इसे क्या कहते हैं? जोड़े बनाव। नीचे है पर्वत शिखर, चाय, झील, राजधानी, वेशभूषा, पहाड़ी स्थान, देहरादून, फिरन, कंचनजंगा, कहवा, नैनीताल, ढर। ये आपको पहाड़ी राष्ट्र के वर्णन के साथ मिलान कराना है। सो पेज 40, चैप्टर नंबर 5 फिनिश्ड।